سبق نمبر پانچ، معزز سامعین السلام علیکم۔ ہم خدائے پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اسی پر چلے جو اس نے قائم کی ہے، تاکہ اس کو ابدی امن اور دائمی خوشی اور سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم آپ کو سچائی کی راہ کے نام سے یہ پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے سیکھا تھا کہ خدائے قدوس نے آسمان، زمین اور سمندر اور ان کے اندر جو کچھ ہے کیسے بنایا۔ خداوند قدوس نے چھ دنوں میں یہ ساری چیزیں بنائیں، لیکن اپنے کلام اور حکم کے علاوہ کوئی اور ذریعہ استعمال نہیں کیا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ خدائے پاک نے دنیا کو کیوں بنایا۔ اس نے اسے اس انسان کے لیے بنایا جسے اس نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، تاکہ یہ انسان خدائے کریم کے جلال کو ظاہر کرنے کا باعث بنے۔ خداوند جلیل کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی جہاں انسان خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے۔ آج ہمارا پروگرام ہے کہ کلام مقدس سے وہ حقیقت جانیں اور سیکھیں، جس سے واقعی پتا چلے کہ خدائے پاک نے آدم یعنی پہلے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ خدائے پاک کے فضل سے اور اس کی مدد سے ہم یہ بھی دریافت کریں گے کہ اس نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تورات شریف میں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں بیان کیا گیا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے ہے جسے جاننا اور سمجھنا ہر بشر کے لیے ضروری ہے۔ خداوند کریم نے پہلے آدمی کو اور پہلی عورت کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ذرا سوچئے کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ بالکل ہو بہو اس جیسا ہو۔ دراصل انسان کی تخلیق ایسی تخلیق ہے جو ساری مخلوقات سے زیادہ اہم اور افضل ہے۔ صرف انسان ہی تھا جسے خدا پاک اپنی شبیہ اور صورت پر بناتا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کا کلام جو فرماتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، تو اس سے اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے باب کی ساتویں آیت میں کلام خدا کا بیان ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اس آیت پر غور کرتے ہوئے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب خداوند خدا نے حضرت انسان یعنی آدم کو بنایا تو اس وقت اس نے دو عناصر کا استعمال کیا، پہلا عنصر جسم جو مٹی سے بنا اور دوسرا عنصر روح۔ انسان کوئی طبعی مخلوق نہیں، انسان جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے۔ خدا پاک نے انسان کو دو حصوں میں بنایا۔ خدا تعالیٰ کا کلام جو ارشاد فرماتا ہے اسے غور سے سنیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا۔ دوسری بات یہ کہ خداوند تعالیٰ نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ کلام پاک کے اس حوالے میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر نے پہلے جسم کو بنایا۔ خدائے پاک نے جسم کو پہلے کیوں بنایا؟ خدائے پاک نے جسم کو پہلے اس لیے بنایا کہ جب وہ انسان کی روح کو اس میں ڈالے تو اس کے رہنے کے لیے کوئی سکونت گاہ ہو۔ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کا جسم دراصل آپ کی روح کی عارضی سکونت گاہ ہے اور اجڑ جانے والا ایک خیمے کا گھر ہے؟ اسی وجہ سے کلام پاک فرماتا ہے کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ خدا پاک نے جسم کو روح کی عارضی سکونت گاہ کے طور پر بنایا۔ خدا پاک نے پہلے انسانی جسم کو کس چیز سے بنایا؟ کلام خدا بتاتا ہے کہ خدا پاک نے پہلے انسانی جسم کو زمین کی مٹی سے بنایا۔ ہم جس نئے دور میں رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ زمین کی مٹی میں 20 کیمیائی عناصر پائے جاتے ہیں۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ تمام کیمیائی عناصر انسانی جسم کے اندر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے خدا کے بندے حضرت داؤد نبی نے زبور کی کتاب میں کہا، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ بے شک انسانی جسم انسان کی مٹی سے یعنی خاک سے بنا ہے، تو بھی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ فضول اور بیکار ہے۔ इंसानी जिस्म के अंदर अरबों खरबों सेल होते हैं। ये तमाम तर सेल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनकी साख्त ऐसी होती है कि वो कोई मुकम्मल फंक्शन सर अंजाम देने के अहल होते हैं। इंसानी जिस्म एक मौजजा है। हमारे जिस्मों में खुदावंद करीम ने दिमाग, दिल, फेफड़े, मैदा, जिगर, आंते, हड्डियां, पट्ठे, जिल्द, आंखें, कान, नाक, मुंह और कई हैरत अंगेज अजा डाल दिए हैं। हर उज्व अपने काम से बाखूबी वाकिफ है। सिर्फ खुदा ताला ही ये सब कुछ बनाने की कुदरत रखता है। इसी वजह से हजरत दाऊद नबी ने अपनी जबूर की किताब में बयान किया है कि मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जी हाँ, इंसानी जिस्म का वजूद वाकई एक बड़ा हैरत अंगेज कारनामा है। तो क्या ये जिस्म ही है जिसे खुदाए पाक ने अपनी सूरत पर बनाया? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदाए पाक तो पाक रूह है। खुदाए करीम ने इंसान की तबीयी सूरत को अपनी माने नहीं बनाया। तो फिर जब खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर बनाया, तो इससे खुदा का कलाम क्या सिखाना चाहता है? कलाम खुदा हमें ये सिखाना चाहता है कि उसने इंसान की रूह को अपनी मानिंद बनाया। हमें पहले ही मालूम है कि जब खुदाए करीम ने इंसान के जिस्म को जमीन की मिट्टी से बनाया तो उस वक्त वो बेजान था, बस एक पुतला था। खुदाए करीम ने इंसान के जिस्म के अंदर रूह फूंकने से पहले इसे जमीन की मिट्टी से क्यों बनाया? खुदाए पाक जो कादर मुतलिक है, उसने बाकी मखलूकात की तरह इंसान को एक ही हिस्से के तौर पर एक ही दफा क्यों ना बना दिया? शायद वो इंसान को ये सिखाना चाहता था कि उसे अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार हासिल नहीं। इंसान अपनी कोशिश से, अपने जोर से और अपने इख्तियार से जिंदगी का मालिक नहीं हो सकता और ना ही किसी जानदार शय को पैदा कर सकता है। खुदा ताला ही जिंदगी का मालिक है और जिंदगी सिर्फ उसी में पाई जाती है। जिंदगी इंसान के बस में नहीं, ये खुदावंद करीम का एक अनमोल तोहफा है। खुदाए पाक के पाक कलाम का फरमान है कि खुदावंद खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। खुदाए पाक ने जो जिस्म तरतीब दिया था, दम फूंकते ही उसमें जिंदगी आ गई। इसमें जिंदगी क्यों आई? क्योंकि खुदाए करीम ने, जो जिंदगी का मालिक है, उसने इस जिस्म में रूह डाल दी। खुदाए पाक ने इस बेजान पुतले में अपना दम फूंक दिया। अब वो जिंदगी जो खुदाए पाक में थी, वो इंसान के अंदर दाखिल हो गई। तब वो इंसान जीती जान हुआ। तो फिर वो कौन सी चीज थी जिसको खुदावंद करीम ने अपनी सूरत पर बनाया? वो रूह थी। खुदाए करीम ने इंसान की रूह को अपनी मानिंद बनाया। क्या आप जानते हैं कि खुदाए पाक की पाक रूह की और भी बहुत सी खूबियां हैं जो इंसान की रूह में भी पाई जाती हैं? इससे पहले कि हम आज के सबक का नतीजा सामने रखें, हम तीन खूबियों को मद्देनजर रखेंगे। ये तीनों खूबियां खुदावंद कुदूस की पाक जात में पाई जाती हैं और यही खूबियां इंसान के अंदर भी मौजूद हैं। ये तीन खूबियां जो खुदाए करीम में भी मौजूद हैं, जब हम इन पर गौर करते हैं तो फिर खुदाए पाक के कलाम पाक का वो भेद अच्छी तरह हमारी समझ में आ जाता है जिसमें फरमाया गया है कि खुदावंद खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर बनाया। ये तीन खूबियां जो खुदाए करीम ने इंसान के अंदर डाल दी हैं, वो ये हैं। खुदाए पाक ने इंसान के दिमाग को जो रूह है वो दिया ताकि वो खुदाए कदूस को जान सके। खुदाए करीम ने इंसान को दिल दिया जो जज्बात से पुर है ताकि इंसान खुदा को प्यार करे। खुदाए करीम ने इंसान को आजाद मर्जी बख्शी ताकि वो खुदाए पाक की फरमा बरदारी करे। क्योंकि खुदावंद करीम दिल, दिमाग और मर्जी का मालिक है, इसलिए खुदाए पाक ने इंसान के अंदर दिल, दिमाग और मर्जी को डाल दिया। आइए सीखें कि इसका मतलब क्या है। पहली बात यह है कि खुदाए करीम ने इंसान को ऐसा दिमाग दिया जो खुदावंद खुदा को जान सके और उसी की तरह सोच समझ सके। खुदाए पाक ने इंसान को बड़ा ताकतवर दिमाग बख्शा ताकि वो इसके साथ एक बड़ा करीबी रिश्ता कायम किए रखे। जब हम पैगम्बर खुदा हजरत इब्राहिम के बारे में मालूम करते हैं तो पता चलता है कि वो खुदाए करीम का दोस्त कहलाया। हजरत इब्राहिम ने खुदाए पाक को शख्सी तौर पर जाना, कबूल किया और उसके साथ खास दोस्ती रखी। ताहम सिर्फ हजरत इब्राहिम ही ऐसी हस्ती नहीं जिसको खुदा ताला की दोस्ती का शर्फ हासिल हुआ, बल्कि हम भी खुदाए करीम के दोस्त बन सकते हैं। खुदाए करीम ये चाहता है कि हमारी उसके साथ गहरी दोस्ती कायम हो जाए। इसीलिए खुदाई करीम ने इंसान को ऐसा दिमाग अता किया जो खुदा की मोहब्बत और दोस्ती को पहचान सके और उस दोस्ती में कायम रह सके। शायद हम जहन में उठने वाले सवाल को अच्छी तरह समझ जाएं कि वो कौन सी सिफत है तो इंसान को हैवान से मुमताज करती है। सिर्फ दिमाग, इंसानी जहन और इंसानी रूह ही इंसान को हैवानी जहन से जुदा करती है। क्या वजह है कि जानवर और हैवान इस रेडियो प्रोग्राम को नहीं समझ सकते? इसकी वजह यह है कि उनका दिमाग इंसानी दिमाग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अजीज सामईन, आप हमारी बातों को क्यों समझ रहे हैं? इसलिए कि आपके अंदर वो दिमाग मौजूद है जिसे इंसानी दिमाग कहते हैं। इसी तरह इंसान की रूह ऐसी बनाई गई है जो खुदाई करीम की रूह से दोस्ती का रिश्ता रख सके। बस हम कह सकते हैं कि इंसान की रूह खुदाई करीम की रूह के मुशाबा है। बेशक हमारे जहनों में ये बात होगी कि हमारा जहन खुदा की हिकमत और इल्म के सामने कुछ भी नहीं, यानी उसके इदराक का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, खुदा की मोहब्बत बड़ी गहरी और वसी मोहब्बत है और उसका इल्म इंसानी अकल से बहुत ज्यादा बालातर है। हमें जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि खुदाए पाक ने इंसान को रूह बख्शी है और ये रूह इस काबिल है कि वो खुदाए कादिर के साथ अपना एक बामानी रिश्ता कायम कर सके, क्योंकि वो जिंदा खुदाए पाक है। खुदा चाहता है कि इंसान हैवानों की माने न बने जिन्हें नूर के बारे में कुछ इल्म नहीं। जानवर के सर में दिमाग है लेकिन वो खुदा की बाबत कुछ नहीं सोच सकता। जानवरों का मुंह तो है मगर वो खुदाए पाक का शुक्र अदा नहीं कर सकते जो उसे हर रोज चारा मुहैया करता है। जानवरों की आंखें तो हैं लेकिन वो खुदाए कदूस के कलाम पाक की तलावत नहीं कर सकते। उनके कान तो हैं मगर वो खुदाए रहीम के कलाम पाक को नहीं सुन सकते। हाँ, आप जो आज के दिन इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं आप ही खुदाए कदूस को जान सकते हैं। अपने खालिक खुदा के साथ आपका रिश्ता बड़ा मजबूत है। अगर आप नजात की सादिक राह को मानकर कबूल कर लेंगे जो खुदाए कदूस ने तैयार की है तो आने वाले इस बाक में हम निजात की सच्ची और सीधी राह को बड़ी अच्छी तरह से बयान कर सकेंगे। आज के रोज हमारे लिए जो बात सीखना और समझना जरूरी है वो ये है कि खुदाए पाक ने इंसान को जो रूह बख्शा है वो इस लायक है कि वो खुदाए पाक को जान सके और पहचान सके। खुदाए कदूस ने इंसानी जिंदगी में एक और शय रखती है और ये शय उसने उसे अपनी सूरत पर बनाते वक्त रखी थी और वो है दिल। खुदाए रहीम ने इंसान को दिल बख्शा ताकि वो खुदाए मेहरबान से प्यार करता रहे। हम इस दिल की बात नहीं करते जो खून को पंप करके पूरे बदन में चलाता है। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ महसूस करते हैं वो आपके जज्बात और आपके ख्यालात हैं। हम आपके अंदर के दिली जज्बात की बात कर रहे हैं। खुदाए करीम ने इंसान अव्वल को इन सारे जज्बात के एहसास के अहल बनाया जिन्हें वो खुद महसूस करता था। खुदाए पाक मोहब्बत का जज्बा रखता है, वो नफरत, खुशी और गमो गुस्से को महसूस कर सकता है। यही वजह थी कि खुदाए पाक ने इंसान के अंदर दिल डाल दिया जो मोहब्बत और नफरत के जज्बात को महसूस करने के काबिल हो। खुदाए पाक चाहता था कि इंसान उससे मोहब्बत रखे जिससे वो मोहब्बत करता है और उस चीज से नफरत करे जिससे कि उसे खुद नफरत है। खुदा ताला चाहता है कि हम उसे सारे दिल से प्यार करें। यही वजह थी कि खुदाए पाक ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और उसे एक दिल अता कर दिया। और एक और चीज थी जो खुदाए पाक ने इंसान को जिसे उसने अपनी छबी पर बनाया था बख्शी। खुदाए पाक ने उसे आजाद मर्जी से भी नवाजा। खुदाए पाक ने हर शख्स को इजाजत दे रखी है कि वो अपनी राह खुद चुने। खुदाए पाक सारी कुदरत का मालिक है, वो चाहे तो कुछ करे चाहे तो ना करे। इसी तरह उसने इंसान को भी इख्तियार दिया है कि वो अपना इंतखाब खुद करे। ताहम खुदाए पाक ने इंसान को आजाद मर्जी का मालिक बनाया है। अब वो अपने इंतखाब में आजाद है कि वो खुदाए करीम की फरमा बरदारी करे या ना करे। खुदाए पाक इंसान को कोई मशीनी आदमी नहीं बनाना चाहता था। खुदाए पाक ने इंसान को सूरज की माने नहीं बनाया जो हर रोज मशरिक से निकलता है, इसके अलावा उसके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं। सूरज हर रोज खुद ब खुद ही खुदाए पाक की मर्जी को पूरा करता रहता है, लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान एक खास मखलूक है। खुदाए पाक ने हमें अपने लिए बनाया है। खुदा चाहता है कि हम उससे मोहब्बत करें और उसकी इबादत करें। खुदाए पाक ने इंसान को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब इंसान की मर्जी है कि वो खुदाए पाक की पैरवी करे या शैतान की, वो खुदा ताला के कलाम को माने या शैतान की बातों को। खुदाए पाक किसी को मजबूर नहीं करता कि वो उसके कलाम को माने। वो हमें हरगिज मजबूर नहीं करेगा कि हम उससे मोहब्बत रखें और उसके कलाम पर अमल करें। मजबूरी की मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं होती। खुदा ताला ने हमें मुकम्मल आजादी दे दी है ताकि हम अपनी मर्जी की राह चुन लें। लेकिन आखिरत में खुदाए पाक हर एक का, जो कोई उसकी बादशाही का इनकार करेगा, इंसाफ करेगा, क्योंकि उसने हर इंसान को अपने ही लिए बनाया है। खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है। वो कहता है कि हम जो दुनिया में हैं वो खुदा के लिए हैं, ना दौलत के लिए, ना किसी दूसरी चीज के लिए और ना ही किसी दूसरे शख्स के लिए हैं। हम खुदा के लिए हैं। खुदाए पाक ने हमें अपने लिए यानी अपनी खुशी और अपने जलाल के लिए बनाया है। खुदाए पाक ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम उसे जान लें, उससे प्यार करें और हमेशा उसके कलाम पर अमल करते रहें। जी हाँ, हमेशा हमेशा। अब्दी खुदा ने हमें अब्दी रूह अता की है। खुदा की यही मर्जी है कि हम कल और आज बल्कि अब तक उसके साथ दोस्ती के मजबूत रिश्ते में कायम रहें। और यही वो वजह थी जिसके बायस खुदाए पाक ने इंसान को अपनी मानिंद बनाया। हम खुदाए पाक के कलाम की यह आयत आपको सुनाकर भेजते हैं, जो याद दिलाती है कि खुदा को इंसान की कितनी फिक्र है। अव्वल ये है कि ऐ इसराइल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। ये प्रोग्राम सुनने का शुक्रिया। खुदावंद ताला ने चाहा तो हम अगले प्रोग्राम में दुनिया के पहले मर्द आदम और पहली औरत हव्वा के बारे में सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे और इस दिए गए सबसे बड़े हुक्म के मतलब और अहमियत को समझने का फजल अता करे, जो कि यूं है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख।